साथियों नमस्कार, आप सुन रहे हैं मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पाटुकर, आज हम आपके बीच उपस्थित हो रहे पक्ष विपक्ष विषय को लेकर, और आज मोबाइल वाणी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने जा रहे। जैसा कि आपको विदित है, आगामी समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव सम्पन्न होना है, और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। जहां भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना योजना की बात करती है, वही कांग्रेस नारी सम्मान योजना की बात करती है। और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित है छिंदवाड़ा जिले की पहली अधिवक्ता आराधना भार्गव जी, और साथ ही समाज सेविका ज्योत्सनाताई पत्रिका जी। नमस्कार दीदी।
नमस्कार दादा। नमस्कार
दीदी, हम आपसे जानना चाह रहे कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना और नारी सम्मान योजना जो बात हो रही है दोनों ही राजनीतिक दलों के माध्यम से, इस संबंध में आप क्या कहना चाहूंगी?
देखिए, जो दोनों योजनाएं तो बोलने के लिए बहुत ही अच्छी है, और बोला भी जा रहा है कि नारी सम्मान के लिए है, लेकिन मैं एक बात अपनी यहाँ रखना चाहती हूँ कि अगर आप ये दोनों योजनाएं दे रहे हैं तो इस योजना के बदले में अगर आप आरक्षण की बात कर रहे हैं कि 50% आरक्षण है महिलाओं को, तो आरक्षण के हिसाब से भी देखा जाएगा तो मैं यह कहती हूँ कि आरक्षण देना ही है। तो आरक्षण, आप राजनीति में केवल आरक्षण की बात करते हो, लेकिन आप अभी बताइए आगामी विधानसभाओं के चुनावों के लिए, लोकसभाओं के लिए इन्होंने ये दोनों लाडली बहना योजना और दूसरी जो कांग्रेस ने निकाली, ये दोनों नारी सम्मान ये जो दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं? तो ये चुनाव आ रहे हैं इसलिए यह महिलाओं को कुछ दे रहे, ये इस्तेमाल हो रहा है, ये तो सत्य सत्य साबित दिख रहा है हमें। दूसरी बात, अभी आप बात कर रहे थे आने वाले चुनाव में अगर हम 50% महिलाओं की भागीदारी हम बोल रहे हैं तो हम कितनी भागीदारी दे रहे? एक तो भी विधानसभा में हमारे क्षेत्र में आपको महिलाएं दिख रही है क्या? अगर 50% महिलाएं आरक्षित है तो महिलाओं का आरक्षण हमें दिख का रहा है? सबसे पहले तो ये मुद्दा उठता है। या हमें एक भी महिला विधानसभा चुनाव में आरक्षित सीट दिखती नहीं है, सारे पुरुष ही वर्ग दिखते हैं। और दूसरी बात, ये जो दे रहे है तो ये देने के बदले आप नारी सम्मान बोल रहे, ये सम्मान कहाँ से आ गया? आप यहाँ पे 1000 और 1500 रुपए देके नारी का सम्मान खरीद रही है। नारी का सम्मान खरीदना नहीं है, उसका अपमान कर रहा है। आपको नारी का सम्मान ही करना है तो उसको स्वावलंबन दीजिए, उसको उद्योग दीजिए। अभी वो उद्योग भी बोलेंगे कि आप दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये दिया गया उद्योग नहीं है, ये भीख है पहली बात तो। और इसका विरोध तो सभी ने करना चाहिए, और जिनके खाते में आए हैं उन्होंने तो सभी ने ये खाते के पैसे ना तो उठाना चाहिए ना तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये मेरा मत है।
जैसा कि अभी ज्योत्सनाताई पत्रिका ने अपनी बात रखी है, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण है, और इनका कहना है कि जब पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण मिलता है तो लोकसभा विधानसभा में क्यों नहीं। साथ ही इन्होंने स्वावलंबन की बात की है। मध्य प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत बहुत सा कार्य हो रहा है, लेकिन जो आजीविका मिशन के तहत जो उद्योग कर रही महिलाएं उनके लिए मध्य प्रदेश में बाजार उपलब्ध नहीं है, और बाजार उपलब्ध नहीं होने के कारण महिलाएं लोन तो ले लेती है लेकिन वह लोन निजी कार्यों में खर्च करके उसको चुकाने की समस्या उत्पन्न होती है। और इसी तरह हमारे साथ आज इस मंच पर उपस्थित है जिले की पहली अधिवक्ता एडवोकेट आराधना भार्गव जी, जो कि छिंदवाड़ा ही नहीं तो संपूर्ण देश भर में जनता के हक के लिए अपनी लड़ाई लड़ती है। कोर्ट से लेकर गली तक और गली से लेकर दिल्ली तक इनकी लड़ाई जारी रहती है, ऐसी जिसे हम आयरन लेडी भी कहे तो अतिशोक्ति नहीं होगी, ऐसी आराधना भार्गव जी हमारे बीच है, हम उनसे भी आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। नमस्कार दीदी।
नमस्कार।
इस संबंध में आपका क्या कहना है कि मध्य प्रदेश में एक ओर लाडली बहना योजना है तो दूसरी ओर नारी सम्मान योजना?
ये दोनों योजनाएं हैं, ये सिर्फ महिला के वोट बैंक बटोरने की योजना है, इससे नारी का कहीं सम्मान नहीं बढ़ रहा है। मेरे पास में आज का अखबार है जिसमें शराब पीकर मारपीट करने से परेशान पत्नी ने दे दी जान, ये 29 साल की महिला है। तो ये जो आप शराब लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं तो इससे तो महिला अपमानित हो रही है, और शराब पीकर पति उससे पैसे भी छीनने का काम कर रहा है तो सम्मान तो उसका कहीं बढ़ ही नहीं रहा है। तो ये तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कंपटीशन चल रहा है, अब कांग्रेस को योजना बनाएगी उसको भारतीय जनता पार्टी करने लगेगी, भारतीय जनता पार्टी ने जो बनाई वो कांग्रेस करने लगेगी। अगर महिलाओं का सम्मान बढ़ाना है तो इन्हें आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण देना होगा, तभी महिलाओं की नीति बन पाएगी, तभी महिलाओं के पक्ष में कानून बन पाएंगे, क्योंकि कानून सड़कों पर नहीं बनते, कानून अदालतों में नहीं बनते, कानून वकीलों और जजों से नहीं बनते, कानून बनते हैं लोकसभा और विधानसभा से। और जब लोकसभा और विधानसभा में महिलाएं होगी ही नहीं, उनका प्रतिनिधित्व ही नहीं होगा, आज 11% महिलाएं अगर लोकसभा में है तो महिलाओं के पक्ष के कानून कैसे बनेंगे, महिलाओं का सम्मान कैसे बढ़ेगा, पैसे दे देने से सम्मान नहीं बढ़ रहा बल्कि उनका जीवन नरक हो गया है, सास अलग पैसे मांग रही है, ननद अलग पैसे मांग रही है, पति तो पैसे छीन लेता है, बैंक में चल मेरे साथ पैसा निकाल और शराब पीने का काम जो चल रहा है, इसको समझने का काम इन पार्टियों को करना चाहिए और इस तरह की कोई नीति नहीं करना चाहिए। जितना भारत सरकार का बजट है उसमें ज्यादा अगर कर्ज हो रहा है तो कर्ज तो बताना भारत के प्रत्येक नागरिक को पड़ेगा। क्या आपने देश के नागरिकों से ये पूछा है, जो करदाता है उनसे पूछा है कि आप इस तरह की योजनाओं के लिए जो पैसा खर्च करने का काम कर रहे हो, जिसका भुगतान तो वो बच्चा जो माँ के गर्भ में है 6 महीने का उसको भी ये कर्ज बताना पड़ेगा, और इससे देश के नारी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तो हम तो सरकार को मोबाइल बानी के माध्यम से चेताना चाहते हैं कि इस तरह की योजनाओं को बंद करिए, आरक्षण देने का काम लोकसभा और विधानसभा में दीजिए, उससे नारी का सम्मान बनेगा। आप इस तरह की योजनाएं जो सम्मान देने के नाम पर कर रहे हैं इससे महिला का अपमान हो रहा है, महिलाओं का जीवन असुरक्षित हो गया है, महिला के साथ हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ रही है।
दीदी जैसा कि हमारे साथ अभी ज्योत्सना पाटनीकर दीदी भी जुड़ी है और वो दीदी राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज के विचारों से प्रभावित है और गांव गांव तक ग्राम गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए निकलती है, तो हम ज्योत्सनाताई पाटनीकर जी से जानना चाहेंगे कि ग्राम सभा ग्राम गीता में महिलाओं के सम्मान के हितों को लेकर कौन सी बात कही गई है, और क्योंकि मध्य प्रदेश में ग्राम गीता ही हिंदी रूपांतर पंचायती राज अधिनियम है, तो कौन सी बात ग्राम गीता में कही गई है, क्या वह वर्तमान में मध्य प्रदेश में लागू है?
ग्राम गीता जो एक ग्रंथ है, सबसे पहले तो ये इस कलयुग की संजीवनी बूटी है। उस समय में भगवत गीता जो था उस युग में भगवत गीता का बहुत ज्यादा उस समय में उस दौर में जरूरत थी, लेकिन आज के कलयुग में आज इस ग्राम गीता की संजीवनी बूटी बनकर जरूरत है। और ग्राम गीता में वंदनीय राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज यही बोलते हैं कि नारी का सम्मान करना चाहिए, वह गुरु है पहली बात तो, और गुरु होने के बाद भी उनके लिए जो एक अध्याय निकाय महिलोन्नति अध्याय 41 अध्याय है उसमें से 42वां मतलब नारी का स्थान महिला का स्थान वहां पर इतना बड़ा रखा है, और उसके साथ साथ में वंदनीय राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज ने जो ग्राम गीता के माध्यम से ग्राम सभा में भी मतलब संपूर्ण विश्व में संसार में नारी का क्या महत्व है, तो नारी के महत्व में जब हमारा गांव आता है एक घर आता है कि घर को वो जितने अच्छे से चलाती है उतने अच्छे गांव को और समाज को और हमारे देश को भी बहुत अच्छे से चलाती है। तो ये चलाने के साथ में जो ग्राम सभा है जिस ग्राम सभा में 50% अगर महिलाएं 50% अगर महिलाएं है आरक्षण जो दिया है तो उसमें अपना ग्राम सभा का कोरम पूर्ण होता है, वही अगर 100% पुरुष है और उसमें एक भी महिला नहीं है तो कोरम पूर्ण नहीं हुआ ऐसा माना जाता है। मतलब अगर 100% महिला है और एक भी पुरुष नहीं है तो भी वो ग्राम सभा का प्रस्ताव और कोरम पूरा माना जाएगा। तो उस समय में अध्यात्म से लेके हम आज राजनीति विज्ञान सामाजिक सभी क्षेत्र में देखा जाएगा तो आपको महिलाओं का स्थान सबसे उच्च और वो सबसे उच्च गुरु माना जाता है। तो वंदनीय राष्ट्र संत इस तुकड़ोजी महाराज इसलिए कहा है कि जिचे हाथी पायनाची दोरी तीज तक गा था उद्धार करी, वो झूले में बच्चे को भी झूलाती है और गर्भापासुनी करते आई के संस्कार बालकावरी मतलब गर्भधारणा से लेके जो संस्कार वो देती है तो बच्चा बड़ा होता है वहां तक के वो महत्व वंदनीय राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज ने बताया है सभी को।
आराधना दीदी, जैसा कि अभी ज्योत्सनाताई पत्रिका जी ने कहा है कि ग्राम गीता में महिलाओं के हक और अधिकारों के लिए बहुत सी बातें लिखी हुई है, और ग्राम सभा के हम कोरम की भी बात करते हैं, तो उसमें जब तक 50% की पूर्ति ना हो तो वो कोरम पूरा नहीं माना जाता है, और त्रिस्तरीय पंचायत राज में तो 50% आरक्षण मिल चुका है, फिर यह आरक्षण लोकसभा विधानसभा में क्यों नहीं, यह हम आपसे जानना चाहते हैं।
ब्रह्मदेव शर्मा ने ग्राम गीता का हिंदी ट्रांसलेशन करवाया और विजय सिंह ने इसको लागू करवाने का काम करवाया। तो जो अब जो कांग्रेस की सरकार जो कांग्रेस के पक्ष में बैठे हैं, उनको उसका पालन करने के लिए सरकार को बाध्य करना चाहिए कि भाई जो चीज उन्होंने बनवाई है वो लागू तो करो। तो हम तो ग्राम पंचायत में भी ये देख रहे हैं कि वो सिर्फ महिला चुनकर पर आ गई है आरक्षण से, उसको काम करने की आजादी भी नहीं है। वो तो घर में जाकर दस्तक लेने का काम करेगा, उसका पति काम करेगा, इस तरीके का वातावरण है। तो अभी तो महिलाएं जाग चुकी है, महिलाएं अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए निश्चित तौर पर आरक्षण, क्योंकि ये सवाल सत्ता का है, पुरुष प्रधान समाज में सत्ता में महिला नहीं चाहिए, इस बात का प्रतीक है लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण नहीं देना। जब कोई वेतन उन्हें बढ़ाना होता है, जब राजनीतिक दलों को किसी चीज का लाभ लेना होता है, तो वो विधेयक वो कानून कब पास हो जाता है देश की जनता को पता नहीं चलता। पर जब जब महिला आरक्षण का बिल लोकसभा में आता है, थोड़ी की थोड़ी राजनीतिक दल एक साथ इकट्ठा होकर उस विधेयक को पारित ही नहीं होने देते, तो ये उन्हें समझ लेना चाहिए कि ये जो महिलाओं को इन्होंने 1000 रुपए 1500 रुपए देने का कहा है, महिला के अंदर चेतना पैदा हो गई है। अब अभी तक हम किसी गांव में जाते थे, हम कोई भाषण देते थे, कोई कार्यक्रम करते थे, महिलाएं कभी नहीं आती थी, पर अब हमने देखा है किसी भी राजनीतिक दल की गाड़ी गई है तो महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं। तो अब ये जो जो चेतना पैदा होगी, इस चेतना का लाभ ये होगा कि महिलाएं खुद चुनाव में भाग शुरू करेंगी और फिर महिलाओं का राज आएगा, जैसा कि ग्राम गीता में टुकड़ों के महाराज की मंशा है कि 50% महिलाएं हैं, पुरुष अगर नहीं है तो भी वो ग्राम सभा मान्य की जाएगी। उसी तरह इस देश में निकट भविष्य में महिलाओं का शासन होगा, ये महिलाएं स्वयं करके देंगी, मुझे ये ऐसा लगता है। और मैं महिलाओं को अग्रिम शुभकामनाएं भी दूंगी कि राजनीतिक चेतना उनके अंदर पैदा हुई है, इस स्वाभिमान वो खुद ने, सरकार कोई स्वाभिमान देने वाली नहीं है।
मैं अंत में आपसे और इतना जानना चाहूंगा दीदी कि महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 50% आरक्षण मिले, इसके लिए आप क्या भविष्य में करना चाहेंगी, क्योंकि हमने देखा है कि अभी हाल ही में आपका अभी भोपाल में कोई कार्यक्रम है, जो एक महिला होकर लोगों के हितों के लिए आप भोपाल पंचवली से रवाना होने जा रही है, तो जिस तरह लोगों के हक और अधिकारों के लिए आप लड़ रही है, तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि महिलाओं के इस हक के लिए आप कितना लड़ोगी।
इस हक के लिए हम ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक, सड़क से लेकर संसद तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे कि एक तरफ तो सरकार ये बात कह रही है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का काम करेंगे, तो उसी समय सरकार को ये भी बात कहना चाहिए कि हम महिला आरक्षण बिल वाले हैं और इस पर हम सरकार पर दबाव बनाने के लिए लगातार संघर्ष करेंगे, गांव में भी महिलाओं को जगाने का काम करेंगे ताकि हमारे देश में सम्मान पूर्वक नारी जी सके।
अंत में हम ज्योत्सनाताई पत्रिका जी से भी एक अंतिम प्रश्न जानना चाहेंगे कि देश में वर्तमान में एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही है, तो क्या यह इस देश में संभव है लोकसभा विधानसभा चुनाव? यदि ऐसा होता है तो इसका असर ग्रामीण जनता पर और उन क्षेत्रीय छोटे दलों पर क्या पड़ेगा?
एक देश एक राष्ट्र अगर चुनाव करते हैं तो बहुत अभी सुनने को मिल रहा है कि एक देश एक राष्ट्र, लेकिन हम जिस राष्ट्र में रह रहे हैं ये सांप्रदायिकता का राष्ट्र है। यहाँ पर जो पुराने तरीके से थीम रखी गई है, मुझे तो भी लगता है कि अगर एक साथ आप चुनाव करेंगे एक जगह, आप बोलते हैं कि फंड बचाएंगे इससे पैसा बचेगा, तो मुझे एक बात बताइए कि पैसा बचेगा कैसे? पैसा तो तभी भी खर्चा हो रहा था, पैसा तो अभी भी खर्चा हो रहा है। ऊपर यहाँ पे भागम भागी होगी, दौड़म दौड़ी होगी और सारी व्यवस्था उतने टाइम के लिए ठप रहेंगी, ऐसा मुझे लगता है।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, ज्योत्सना ताई और आराधना दीदी, कि आपने अपने महत्वपूर्ण समय में से समय निकालकर मोबाइल वाणी द्वारा संचालित पक्ष विपक्ष कार्यक्रम में भाग लिया और अपनी महत्वपूर्ण बातें साझा की। इसके लिए मोबाइल वाणी परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता है।
Thank you.